मिलन की एवं अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने की आस हमें बहुत काल से रही है, पर हमारी ये कामनाएं तभी पूरी हो सकती हैं जब हम योग में बैठकर अपना कनेक्शन उस परमात्मा से जोड़ें, जिससे हमारी बुराइयां, बुरे संस्कार एवं कर्मेंद्रियों के वश किए हुए कर्म स्वतः ही पलायन करते जाएंगे। तो आइए इन बुराइयों का त्याग कैसे करें, देखते हैं गीता रहस्य के इस एपिसोड में।
मनुष्य अपने जीवन में सदा ही परम शांति और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव चाहता है। मनुष्य को चिरकाल से आकांक्षा रही है कि वो परमात्मा के स्वरूप में मगन हो जाए, उसका परमात्मा से मिलन हो जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके मन का भटकना बंद होकर उसका चित्त पूरी तरह शांत हो जाए। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में योग की विस्तृत चर्चा की है और योग ही ऐसा एक साधन है जो मनुष्य की इन अलौकिक कामनाओं को पूर्ण कर देता है। तो छठे अध्याय के 10वें श्लोक से आगे हम बढ़ रहे हैं। योग की अति सुंदर और गहन व्याख्या, कौन योगी बन सकता है? क्योंकि प्राय संसार में बहुत सारे लोग ध्यान लगाते हैं, तपस्या करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हैं, त्राटक करते हैं, पर सत्य बात यह है कि बिना कुछ बुराइयों के त्याग के किसी का भी चित्त शांत और एकाग्र नहीं हो सकता। कुछ ऐसे स्वभाव संस्कार, कुछ ऐसी आदतें जो मनुष्य को लग गई हैं, वो मनुष्य के मन को भटकाती हैं। मन की भिन्न भिन्न धाराएं विभिन्न नदियों की तरह बहने लगती हैं भिन्न भिन्न दिशाओं में, और इस तरह मनुष्य निराश हो जाता है। और आज की दुनिया में यदि कोई योग अभ्यास करना चाहे और उसका मन स्थिर नहीं होता तो वो परेशान होकर इस सुंदर साधना को छोड़ भी देता है। परंतु नहीं, इसके लिए कुछ धारणाएं हैं। भगवान ने ये बहुत अच्छी धारणाएं हम सब के लिए बताई हैं। देह सहित सभी इंद्रियों को वश में रखना एक चीज, दूसरा कामनाओं और आशाओं का त्याग करना, आशा रहित रहना, तीसरी चीज अपने को ब्रह्मचर्य में रखना, चौथी चीज संग्रह वृत्ति का त्याग करना, अर्थात बहुत चीजें इकट्ठी करते रहना, संग्रह करते रहना, और पांचवी चीज भय का त्याग। ये पांच धारणाएं यहां पर अभी अभी गिनाई गई हैं, और भी अन्य अनेक धारणाएं हो सकती हैं जो मनुष्य के जीवन को बहुत श्रेष्ठ, चरित्रवान, निर्मल, बहुत महान बना देती हैं। परंतु इन पांच पर हम चर्चा कर लें, और आगे कहा है कि ऐसे ही एक सहज आसन पर बैठकर, एकांत में स्थित होकर अपने को परमात्म स्वरूप पर स्थिर करें, अपने चिंतन को परमात्मा में लगाए, तो ऐसा योग मनुष्य को मुक्ति और जीवन मुक्ति का फल प्रदान करने वाला होता है। वास्तव में इस योग का एक और बहुत बड़ा प्रयोजन है, महत्व है, और वो है कि मनुष्य आत्मा ने जन्म जन्म जो पाप कर्म किए हैं, जो हर मनुष्य के साथ हैं, ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं जितने पूर्व जन्मों में पाप कर्म न किए हो, तो हम ये कह सकते हैं कि पाप कर्मों का एक विशाल भंडार जैसा, एक बहुत बड़ा बोझ हर एक के ऊपर छाया रहता है। वही कारण है कि मनुष्य का चित्त शांत नहीं होता, भटकता है, दुखी होता है, अनहोनी घटनाएं होती हैं, चलते चलते अनेक जगह बिना मतलब ही विघ्न आ जाते हैं, असफलता होने लगती है, कोई कड़ी बीमारी लग जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। ये सब प्रभाव हैं पूर्व जन्मों के पाप कर्मों के। वो हरेक के साथ हैं और वो इतने ज्यादा हैं कि उनको भोग कर भी पूरा नहीं किया जा सकता। नए पाप बहुत होते रहते हैं मनुष्य से, और इससे आत्मा की शक्ति दिनों दिन छीन होती जाती है। योग अभ्यास से क्या होता है कि जब हम सर्वशक्तिवान से अपना संबंध जोड़ लेते हैं तो उसकी शक्तियां हम में आने लगती हैं, और ये शक्तियां, ईश्वरीय शक्ति, अग्नि का काम करती है जिसमें पाप कर्म जलकर नष्ट हो जाते हैं। जैसे यहां सोलर एनर्जी अग्नि के रूप में काम करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी अग्नि के रूप में काम कर सकती है। ये ईश्वरीय शक्ति बहुत बड़ी अग्नि है जिसमें मनोविकार भी जलकर नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म के पाप भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य निष्पाप हो जाता है, निर्मल हो जाता है, उसका चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाता है और उसके मनोविकार भी समाप्त हो जाते हैं। जिन मनोविकारों के साथ मनुष्य युद्ध करते करते थक जाता है उनको केवल योग की शक्ति से ही जीता जा सकता है। आप सभी ने सुना होगा संसार में बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स और विद्वानों ने भी ये एक मत से स्वीकार कर लिया था कि किसी बाह्य शक्ति से, किसी बाह्य शत्रु से लड़ना सहज संभव हो सकता है, उस पर विजय पाना भी संभव हो सकता है, परंतु अंदर के जो ये पांच महाशत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और भी इनकी जो छोटी छोटी सेना है, इसको जीतना ये बहुत मुश्किल है। ये बहुत बड़े शक्तिशाली व्यक्ति का काम है जिसने अपने मन को जीत लिया हो, कर्मेंद्रियों को जीत लिया हो, परंतु ये सब भी योग बल से ही संभव है। योग में ही वो शक्ति है जो हमें परमात्मा से मिलती है, जिसके द्वारा हम काम विकार पर, क्रोध पर, अहंकार पर सहज ही जीत पा सकते हैं। यूं भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य योग अभ्यास करता जाता है उसकी पवित्रता बढ़ती जाती है, उसकी शक्तियां बढ़ती जाती हैं, उसके अंदर का सूक्ष्म परम सुख और आनंद बढ़ता जाता है। इस कारण ये विकार स्वतः ही अलग हो जाते हैं, ये छूटते जाते हैं, इनके प्रति निरसता आती जाती है, वैराग आने लगता है, मनुष्य का चित्त उपराम हो जाता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा पहले ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है, तब और सब विकार सहज रूप से जीते जा सकेंगे। ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद ही मनुष्य में पवित्रता की शक्ति आती है। हम पहले भी चर्चा कराए हैं कि बिना ब्रह्मचर्य के बल के मनुष्य का ब्रेन उस योग्य नहीं होता कि वो परमात्मा के स्वरूप पर मन बुद्धि को स्थिर कर सके। यदि कोई व्यक्ति काम भोग भी करता रहे और वो सोचे कि मैं अपने मन और बुद्धि को परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा के स्वरूप में भी लगा दूं, तो ये कदापि संभव नहीं होगा, क्योंकि जो मनुष्य विषय का भोग कर रहा है, जो काम भोग में रत है, उसको वही चिंतन होगा, वो देह का चिंतन करेगा, वो बुराइयों का ही चिंतन करेगा, उसकी वृत्तियां पूर्णतया दूषित होती चली ही जाएंगी। और जब तक चित्त की वृत्तियों को शुद्ध न किया जाए तब तक कोई मनुष्य योगी नहीं बन सकता। तो जो हमारी ये कर्मेंद्रियां हैं, शरीर सहित कर्मेंद्री, ये शब्द यहां आ गया है, शरीर में ही कर्मेंद्रियां हैं लेकिन आत्मा इनकी मालिक है, और आत्मा में ये दो शक्तियां हैं मन और बुद्धि, ये चेतन शक्ति है उसकी। मन के संकल्प ही मनुष्य के शरीर पर और उसकी कर्मेंद्रियों पर प्रभाव डालते हैं। मन यदि शुद्ध हो जाए तो कर्मेंद्रियां धीरे धीरे शीतल होने लगती हैं, लेकिन यदि मन में ही विकारों का उद्वेग हो तो कर्मेंद्रियों में उनका प्रकोप अवश्य आ जाएगा। हमारे हर संकल्प का प्रभाव हमारे शरीर पर भी आता रहता है, इसलिए मन को शुद्ध विचारों से ज्ञान के द्वारा ठीक कर लेना चाहिए। हमेशा ये साधना करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले कि मेरे मन में निगेटिव चिंतन न चले। पहले अपने चिंतन को पॉजिटिव बनाएं, जब चिंतन पॉजिटिव हो जाता है तभी वो चिंतन श्रेष्ठ और शक्तिशाली बन जाता है, और उसके बाद चिंतन समाप्त होकर मनुष्य परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो सकता है। क्योंकि योग का तो पहला ही सिद्धांत यह है कि अपने को आत्मा समझ बुद्धि मेरे से लगाओ। अगर हम अपने को देह समझेंगे तो परमात्मा के स्वरूप से बुद्धि कदापि लग नहीं पाएगी। तो सबसे पहली धारणा है देह और कर्मेंद्रियों पर विजय। तो इसके लिए हमें रोज अभ्यास करना चाहिए, मैं आत्मा इस देह से अलग हूं, मैंने इस देह में प्रवेश किया है। मैंने परकाया प्रवेश जैसा किया है, ये शरीर मुझे प्रकृति से मिला है और मैंने इसका आधार लिया है, तो मैं बिल्कुल इससे अलग हूं। जैसे ड्राइवर गाड़ी से अलग होता है, मालिक गाड़ी से अलग होता है, तो मैं इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर भी और इसका मालिक भी हूं। संग्रह वृत्ति न हो, मनुष्य की आदत हो जाती है अनेक चीजें इकट्ठी करने की, और इसके पीछे एक संकल्प है आवश्यकता कि हमें इसकी भी आवश्यकता है, इसकी भी आवश्यकता है, ये चीज भी जीवन में आवश्यक है। और दूसरी चीज है इच्छा, दूसरों को हम देखते हैं उनके पास ये चीज है, हमारे पास भी होनी चाहिए। दूसरा इसी स्टैंडर्ड से रह रहा है, हमें भी इसी स्टैंडर्ड में रहना चाहिए। तो इस तरह मनुष्य बहुत सारी चीजों का संग्रह करता है, वो धन का भी संग्रह करता है, वो अनेक तरह की संपत्तियों का भी संग्रह करता है। और ये सत्य है कि संग्रह की गई वस्तु सामग्री संपत्ति का सूक्ष्म बोझ, उसका एक सूक्ष्म प्रभाव मन को भारी रखता है, निगेटिव करता है, और ऐसा निगेटिव और भारी हुआ मन परमात्मा के स्वरूप में स्थिर नहीं हो सकता। जो मन बिल्कुल हल्का है, जो सांसारिक बोझ से बिल्कुल मुक्त है, इसके लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं जो डबल लाइट है। मन भी जिसका हल्का है लाइट है, और आत्मा भी लाइट है, ज्योति स्वरूप है, जो इस तरह डबल लाइट है, वही योग युक्त हो सकता है। इसलिए योग का श्रेष्ठ रस पाने के इच्छुक व्यक्ति को त्याग मार्ग अपनाना होता है। जो चीज केवल आवश्यक है जीवन के लिए, शरीर के लिए, उसे केवल उनका ही संग्रह करना चाहिए। यदि वो अनावश्यक चीजों का संग्रह करेगा तो उनकी बुद्धि उन पदार्थों और वस्तुओं में भटककर परमात्मा से दूर चली जाएगी। अब आप सोच लें, आपको सांसारिक वस्तुओं का सुख चाहिए या परमात्म सुख की तलाश है, एक छोड़ना पड़ेगा। अगर सांसारिक सुख की बहुत इच्छा है तो परमात्म सुख से आप स्वतः ही दूर हो जाएंगे, और यदि आपको परमात्म सुख चाहिए तो इन सभी वस्तुओं का दिल से, सच्चे मन से, सहज भाव से आपको त्याग कर देना चाहिए। मार्ग आपको चुनना है आशा रहित। ये शब्द भी बहुत सुंदर आया है। मनुष्य दूसरों से अनेक तरह की आशाएं रखता है, एक्सपेक्टेशंस रखता है, उसकी बहुत सारी इच्छाएं और तृष्णाएं मन में होती हैं, और इसमें मन भटकता जाता है, क्योंकि दूसरा मनुष्य हमेशा ही किसी की आशाओं को, आकांक्षाओं को, कामनाओं को कदापि पूर्ण नहीं कर सकता। एक व्यक्ति को आप सहयोग देते हैं, उससे आप सहयोग की आकांक्षा रखते हैं। एक व्यक्ति को आपने जीवन भर प्यार दिया है, आप चाहते हैं वो उस प्यार का रिटर्न करे। एक व्यक्ति की आपने सदा ही फ्रेंडली मदद की है, बहुत कुछ किया है, आपने उसे पढ़ाया है, पालन पोषण किया है, आप उसका रिटर्न चाहते हैं। अनेक बातें हैं, भिन्न भिन्न तरह की कामनाएं मनुष्य को हैं। आप बड़े हो गए, आपने बड़े काम किए, आप दूसरों से सम्मान चाहते हैं, आप परिवार के बड़े हैं, आपको इच्छा होती है परिवार और समाज मुझे सम्मान की दृष्टि से देखे। बात गलत नहीं है, बहुत अच्छी है, परंतु विचारणीय विषय यह है कि क्या दूसरा व्यक्ति सदा ही हमारी कामनाओं को पूर्ण कर पाएगा? क्या दूसरे की ऐसी स्थिति है, या आर्थिक दृष्टि से वो सक्षम है, या बौद्धिक दृष्टि से वो इतना समर्थवान है कि वो सदा हमें साथ दे? हर एक व्यक्ति की कुछ सीमाएं हैं, उसके अपने भी कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियां होती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने कर्म निष्काम भाव से करे, अर्थात कर्म करने के बाद, किसी को मदद करने के बाद, किसी को प्यार और सम्मान देने के बाद, किसी को अपनापन देने के बाद, उनसे कुछ कामना न करे, सोचे ये तो मेरा कर्तव्य था। तो इससे मन कभी भी उन चीजों के पीछे भटकेगा नहीं। ऐसे ही भय रहित हुआ योगी, योग अभ्यासी के मन में यदि किसी भी तरह का भय हो, छोटा छोटा भी भय, तो वो उसके मन को विचलित अवश्य करेगा। हम सब जानते हैं भय मनुष्य को कमजोर करता है, चाहे वो अपमान का भय हो, चाहे वो जीवन में फेल होने का भय हो, चाहे वो ये भय हो कि कहीं अटक न जाएं, फंस न जाएं, चाहे ये भय हो कि कहीं हमें धोखा न मिल जाए, हार का भय न हो, किसी जीव जंतु कीट प्राणी से भय न हो, किसी मनुष्य से भय न हो, इवन परमात्मा से भी भय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो प्यार का सागर है और वो हमारा अपना है। ऐसा सभी तरह के डरों से मुक्त हुआ प्राणी, न भूत प्रेतों का डर, न अंधकार से डर, न सांप बिच्छू का डर, ऐसा निर्भय रहने वाला व्यक्ति निश्चल स्थिर बुद्धि योग युक्त हो सकता है। तो आओ हम सभी योग साधना पर ध्यान दें। योग साधना का अभ्यास सभी घर गृहस्थ में रहते हुए ही कर सकते हैं। आवश्यकता केवल इस बात की होती है कि हम थोड़ा सा समय निकालें, रोज निकालें, ताकि रोज हमारे मन की धाराएं जो इधर उधर चली गई हैं वो वापिस आकर हम अंतर्मुखी हो सकें, हम अपने मन को समेट सकें, हम अपने चित्त को एकाग्र कर सकें। यदि आप कभी कभी योग करेंगे, सोचेंगे आज तो छुट्टी का दिन है, आज मैं खाली हूं, आज एकांत अच्छा मिल रहा है, चलो आज योग अभ्यास कर लेते हैं, तो इतने पिछले दिनों में आए हुए बहुत से संकल्प, बहुत सारे विचार आपको योग युक्त होने नहीं देंगे। एकांत समय निकालकर रोज कम से कम दो समय, सवेरे उठते ही 15 मिनट, सोने से पहले योग अभ्यास करें। योग अभ्यास के बारे में एक बहुत सुंदर सी बात और इन्हीं श्लोकों में आ गई है कि इस योग अभ्यास को वो व्यक्ति भी सफलतापूर्वक नहीं कर सकता जो या तो बहुत खाता हो या बिल्कुल न खाता हो, जो बहुत सोता हो या बिल्कुल न सोता हो। देखिए, ये मनुष्य के संस्कार हैं, ये नेचर है। किसी को बहुत खाने की आदत है, पेट भरने के बाद भी वो खाता रहता है, अच्छी चीज आती रहे तो और खाता रहता है। हम जानते हैं इससे शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं और विशेष नुकसान होता है कि इससे बुद्धि मोटी हो जाती है, और जिसकी मोटी बुद्धि हो गई है वो योग अभ्यास नहीं कर सकता। जो बिल्कुल नहीं खाता उसकी बुद्धि कमजोर हो जाती है, और कमजोर ब्रेन वाला मनुष्य भी योग अभ्यास नहीं कर सकता है। इसलिए भोजन में एक संतुलन कायम रखने की बहुत अच्छी हमारी नेचर होनी चाहिए। आवश्यकता है ये कि न तो हम बहुत ज्यादा खाएं न बहुत थोड़ा, ऐसा भी हम न खाएं जिससे हमारा शरीर भारी हो जाए, पेट भारी हो जाए, शरीर में ऐसे तत्व और गैसेज पैदा हो जाए, एसिडिटी पैदा हो जाए जो हमें स्थिर चित्त न होने दें। तो एक संतुलित भोजन, शाकाहारी भोजन, बिल्कुल सात्विक भोजन, हल्का रखने वाला भोजन, एक पवित्र वातावरण में बनाया गया भोजन, ऐसे मनुष्यों के द्वारा बनाया गया भोजन जिनका चित्त शुद्ध हो, और यदि योगियों के द्वारा बनाया गया भोजन ही किसी को मिले तो ऐसा भोजन खाने वाले को अपने योग अभ्यास में बहुत सहज सफलता प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही सोने की बात है। जो व्यक्ति बहुत सोता है, सुस्ती आलस ये एक बहुत बड़ा विकार है, उसकी बुद्धि भी डल हो जाती है, और जो बिल्कुल नहीं सोता उसका ब्रेन बहुत कमजोर हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि हम तो सोए नहीं, योग अभ्यास करें, चाय पीते रहें, जगते रहें, जबरदस्ती जगते रहें, तो ये जबरदस्ती का सौदा नहीं है। इससे ब्रेन की शक्तियां बहुत निगेटिव और कमजोर हो जाती हैं। इसलिए सोने का भी जीवन में बैलेंस होना चाहिए। 6 घंटे की नींद बहुत है, पर्याप्त है, जो हमारे शरीर को और हमारे ब्रेन को एनर्जी भी देगी, हमारी थकान भी मिटाएगी, हमें फ्रेश भी करेगी, और जब हम योग अभ्यास में बैठेंगे तो हमें नींद भी नहीं आएगी। नहीं तो बहुतों को नींद आ जाती है, मन जैसे ही शांत होता है वो पूरी चिर निद्रा में चले जाते हैं और योग अभ्यास का पूरा आनंद समाप्त हो जाता है। इन दो धारणाओं को भी हम अपने जीवन में अपना लें। वैसे भी मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए, इस जीवन में प्रसन्न चित्त और सरल और सफल होने के लिए भोजन और नींद का संतुलन अति आवश्यक होता है। आओ हम सभी इन धारणाओं को अपनाकर अपने जीवन को योग युक्त बनाए और परमात्म प्यार का, उसकी परम शांति का निरंतर और सहज भाव से अनुभव करते चले।
ब्रह्मचर्य में रहने से, आशाओं का त्याग करने से, देह सहित अपनी सभी कर्मेंद्रियों को प्रभु अर्पण कर देने से हमारी सभी अलौकिक कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो क्यों न हम प्रभु मिलन मनाकर अपने जन्म जन्मों की प्यास बुझा लें। इसी के साथ हम 18वें एपिसोड के अंत तक आ पहुंचे हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न अथवा सुझाव हो तो हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है, ओम शांति वीडियो चैनल, शांतिवन, तलेटी, आबू रोड, 307510। हमारा फोन नंबर है 09414423866।
शक्ति।